तो मैंने वो सूरज चांद की मिसाल में आपको समझाने की कोशिश की थी स्पिरिचुअलिटी में आप और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और किसी रसूल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी और मेरे लिए जो राह हमवार की गई है, जिसमें हमने पीछे पीछे चलना है, जिस पर हमने इत्तेबा करनी है, वो रास्ता वही है जिस पर तमाम रसूल चल कर गए हैं, जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर गए हैं। सूरज और चाँद का कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है। क्या चाँद जो है वो सूरज से सबकत ले जा सकता है? कभी भी नहीं ले जा सकता। क्या चाँद सूरज के बराबर आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन चाँद का सारा रिफ्लेक्शन होता कैसे है? सूरज की रोशनी से। तो बिल्कुल यही मिसाल उम्मत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लोग कहते हैं कहाँ हम और कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत है कि कहाँ हम और कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम रसूल। जिस तरह रसूलों को आज़माया गया उस तरह आपको और मुझे नहीं आज़माया जाता। जिस तरह ठोक बजाकर उनके ईमान को चेक किया गया और उनके ईमान को पुख्ता किया गया, ऐसे आपका और मेरा ईमान नहीं सख्त तरीके से आज़माया जाता। किसने कहा मुसलमानों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आधी रात खड़े रहो तहज्जुद के अंदर? कहा हमें? हमें तो नहीं कहा कि आप एक एक क़याम के अंदर सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा की 100 आयात एक रकत में पढ़ लीजिए, इसलिए कि आपके रसूल पढ़ते थे? हमें तो नहीं कहा गया। हमें यह कहा गया कि ज़कात के अंदर से हर साल आधा माल ज़कात कर दो। अल्लाह तो बहुत कम हमसे तवक्को रखता है। अल्लाह जानता है हमारे ईमान कितने कमज़ोर हैं। अल्लाह जानता है हमें कितना स्टेमिना है। अल्लाह जानता है हमारी नेकियां कितनी टूटी फूटी हैं। अल्लाह ने हम पर अंबिया जैसी आजमाइशें डाली ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जब तुम पर आजमाइश आए तो मुझ पर पड़ने वाली आजमाइशों को याद कर लिया करो। क्यों कहते थे? तुम्हें अपनी आजमाइश हल्की लगेगी, तुम्हें अपनी मुश्किल हल्की लगेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता के गए हैं जिनके दर्जे हैं सिवा उनके सिवा मुश्किल है। अगर आप इस्लाम के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक अपनाने की टूटी फूटी कोशिश कर रही हैं, अगर आप अपने ख़ानदान के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी औलाद और अपने शौहर के साथ इस्लाम के माहौल को डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं और मुश्किल आ रही है, तो ये पीछे हटने का नहीं और जम जाने का वक्त होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा है जिनके दर्जे हैं सिवा, ये मफहूम बनता है एक अहादीस का, जिनके दर्जे हैं सिवा उनके सिवा मुश्किल है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया और रसूलों पर आईं और उसके बाद उन पर आईं और आएंगी जो उनके करीब तरीन पहुँचने वाले आमाल करेंगे। तो जब मुसलमानों पर आजमाइशें आती हैं तो ये अपना दीन छोड़कर भागने का वक्त नहीं होता। इस वक्त मुसलमान उम्मत पर आजमाइशें हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी और मेरे शहर पर बमबारी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान उम्मत इस वक्त मुश्किल में नहीं है। अगर आप और मैं जो हैं वो इस वक्त ठंडी मशीन में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर लोग गर्मी से तड़प के मर रहे हैं हीट वेव की वजह से। इस वक्त बहुत सख्त आजमाइशें हैं। अगर आपकी और मेरे घर में हर दूसरे दिन पानी का टैंकर आ जाता है, कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कराची के अंदर पानी की स्कार्सिटी नहीं है। कहत पड़ रहा है कराची के अंदर, ऑलमोस्ट बोरिंग करा करा के मीठा पानी नहीं निकल रहा है। कसरत से इस्तग़फ़ार करने की और कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इस शहर को वाकई बारिश की ज़रूरत है और अच्छी बारिश की ज़रूरत है। इतना हीट डिवेलप हो रही है, इतनी हीट वेव आ रही है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी ज़्यादा हीट और हवा रुकने के बाद, और हवा अपोजिट चल रही है। आप में से जिन लोगों को ज़रा भी आइडिया है कराची की हवाओं का, वेस्टर्न विंड्स चलती हैं आपकी, जब भी आप अपने घर जो हैं वो वेस्टर्न डायरेक्शन पर बनाते हैं, हवा बिल्कुल अपोजिट है इतने दिनों से। और जब हवा अपोजिट होती है तो मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बारिश आनी चाहिए, बट बारिश नहीं आ रही। तो कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। इस्तग़फ़ार आसमान के दरवाजे रहमत के खोल देती है। कीजिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार। अगर आपकी और मेरे घरों में ठंडी मशीन चलती है, नल में पानी आता रहता है और हमें कोई मुश्किल नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पर इस वक्त मुश्किल नहीं है। उम्मत पर मुश्किलात हैं, तो ये मुसलमान मजीद बनने का वक्त है। ये एम्बेरिस मुस्लिम बनकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का, अपने दुपट्टों को उतारने का और अपने स्कार्फ्स को पीछे करने का वक्त नहीं है। ये जम जाने का वक्त है। मुसलमान औरत तो फोर फ्रंट पर इस्लाम को सपोर्ट करती है। आपको तो अल्लाह ताला ने, हम इसी बात पे रोते रहते हैं कि जन्नत में हमें हूरें नहीं मिलेंगी या हमें हूरों के इक्वलेंट कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दुनिया में तो देखें आपके ऊपर अल्लाह ने कितना बड़ा इम्तिहान डाला है मर्दों के ऊपर। मैंने पहले भी ये बात की थी, मर्द फोर फ्रंट से नहीं मुकाबला करता है इस्लाम का। आप कर रही हैं डिफेंड मुसलमान औरत, बालिग मुसलमान औरत होते हुए फोर फ्रंट से इस्लाम को, दुनिया के किसी कोने में भी चली जाएं, मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी छुप नहीं सकती, नहीं छुप सकती। लेकिन हम छुपा देते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि जो उम्मत पर मुश्किलात आई हुई हैं इस वक्त, बेहतर यही है, हिकमत यही है, अपने आप को मुश्किल से बचाया जाए। माएँ ही हैं ना जो अपनी बच्चियों को इंग्लैंड में बैठे हुए यहाँ बैठ के मशवरे दे रही हैं स्कार्फ उतार दो इस्लामोफोबिया के डर की वजह से, तो वापस क्यों नहीं बुला लेते बेटियों को? किसके लिए रोका हुआ है? डिग्री के लिए? आई नो इट्स वेरी हार्ड टू से, इतना पैसा दे के बच्चों को वहाँ भेज दिया, इस्लामोफोबिया के डर से उनके स्कार्फ तो उतरवा देंगे, यूनिवर्सिटी से वापस नहीं बुलाएंगे। स्कार्फ क्यों उतरवाते हैं? इट्स वेरी हार्ड टू लिसन, इट्स वेरी हार्ड टू से, मुश्किल बहुत होता है। जाहिर बात है जब आपने भेजा तो हो सकता है 2 साल पहले तब हालात ऐसे नहीं थे, इट्स अ फैक्ट, वक्त के साथ साथ हालात तंग होते जा रहे हैं। तो चॉइस अल्लाह ताला देख रहा है मुसलमानों की, दुनिया छोड़ेंगे अल्लाह की खातिर या दीन छोड़ेंगे दुनिया की खातिर? हम सब के अमाल हमारे सामने हैं और हम सब ने अल्लाह को फर्दन फर्दन जवाब देना है। मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये मेरी चॉइसेस बता देती हैं, किसके लिए हम सब कर रहे हैं और क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक के बाद एक इंसान तो दुनिया से जा ही रहा है हमारे सामने, कौन किस हाल में गया और किन चॉइसेस को अपने साथ अटैच करते हुए गया, एट द एंड ऑफ द डे यही काम आएगा। मेरी औलाद की डिग्रीज काम नहीं आएंगी, मेरे औलाद के साथ जो टाइटल्स लगे होंगे उसके प्रोफेशन के वो भी नहीं काम आएंगे अगर मैंने उनको अल्लाह का बंदा बनाने की कोशिश नहीं की। और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का बंदा ना बन सका तो आप किन फरिश्तों के हवाले और किन लोगों के हवाले उसको करके जाएंगी? किसकी ज़ुबान में वो तहसीर होगी जो मेरी औलाद को मेरे मरने के बाद हिदायत का रास्ता दे दे? आप कहें अल्लाह देगा, देगा तो अभी भी अल्लाह। मैंने अपना कितना हिस्सा डाला, मैंने कितनी ग्रूमिंग की अपनी औलाद की, मैंने कितनी जान लगाई अपनी औलाद का दीन बचाने के लिए? अल्लाह ने बता दिया है, अम्बिया का रास्ता तो मुश्किल था, तुम्हारा रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, ये जान छुड़ाने का वक्त नहीं है, ये अल्लाह की तरफ आने का वक्त है। अल्लाह ने बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। मैं कोई आपको यहाँ कोई स्टैंडर्ड सेट रूल नहीं बता रही कि आप क्या करें और क्या ना करें। आपका घर, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़, आपके सरकमस्टांसेस, आपकी अपनी औलाद के वो कितना स्टैंड ले सकती है। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी, इस्लामोफोबिया के डर से अपनी औलादों के दीन को पीछे मत करें, इसलिए कि आज आप उनके दीन को आप कहकर पीछे करेंगी, कल उनका दिल नहीं करेगा दीन पर अमल करने को। तवक्कुल भी कोई चीज़ होती है, तवक्कुल अल्लाह क्या होता है? अपनी तरफ से कोशिश करो फिर अल्लाह पर छोड़ दो। अपनी तरफ से कोशिश करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सब लिबास, इस्लामी लिबास, सतर वाले लिबास उतार कर फेंक दें, हमने कहा हमने कोशिश कर ली अब अल्लाह के हवाले। यही तो आजमाए हैं हम, आजमाया जा रहा है हमें, और क्या आजमाया जाएगा मुझे और आपको? किसने पत्थर मारा उठा के? किसने पत्थरों की बौछार कर दी आपके और मेरे ऊपर कि तुमने स्कार्फ पहना हुआ है? किसने आपको और मुझे ख़ानदान के अंदर जो है वो मिलना जुलना छोड़ दिया? बेचारे ना चाहते हुए भी ख़ानदान वाले हमसे मिलते हैं और हमें बर्दाश्त ही करते हैं, लिटरली हमें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हम ख़ानदान वालों को बर्दाश्त करते हैं, टर्न द टेबल्स, ख़ानदान वाले आपको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए कि ख़ानदान वाले तो वही हैं जो 20 साल से थे, जो 40 साल से थे, जो 50 साल से थे, आप बदली हैं, आप नहीं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। टर्न द टेबल, आपको गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आपको उन पर प्यार आएगा। कितने साबिर ख़ानदान वाले हैं मेरे। ये जमने का वक्त है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको उस इरा के अंदर पैदा किया। वे पढ़िए स्कॉलर्स की तफसीर, पढ़िए किताबें, लिटरली आप और मैं उस इरा के अंदर हैं जो इरा इस वक्त बहुत सख्त आजमाइश का है। हाँ पीछे भी आजमाइशें गुजरी हैं बट इस वक्त इस्लाम पर जम जाना बहुत बड़ी आजमाइश है। इस वक्त जो जमेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके दर्जात में बुलंदी ज़रूर करेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी करेगा। तो अल्लाह ने डिमांड बहुत कम की है, इस दीन को बोझ मत समझें, इस दीन को मुसीबत मत समझें। ये दीन आजमाइशें लेकर नहीं आता, ये दीन तो तख़फीफ के लिए आया है। क्या कहती है सूरह निसा? सूरह निसा की आयत नंबर 28 में आता है, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ा अन्कुम। अल्लाह तो चाहता है कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किल में कमी कर दे, तख़फीफ कर दे। तुम समझते हो शरीयत पर अमल करूँगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी? नहीं। कौन सिखाता है ये मुझे और आपको? शैतान की बंदगी सिखाते हैं, शैतान के वसवसे सिखाते हैं, शैतान वो जो पीछे से विस्पर करता है, शैतान वो जो सदर के अंदर फूके मारता है। सदर एक होता है ना आपका, एक होता है कल्ब, दिल आपका। चार तीन हिस्से आप यूँ समझें, मैं ईजिएस्ट फॉर्म में बताती हूँ। अल्लाह ताला ने तीन टर्म्स इस्तेमाल किए हैं अरबी ज़ुबान में, फुआद, कल्ब, सदर। फुआद इज़ द इंटरनल मोस्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, इंटरनल मोस्ट पार्ट। और जो आपका फिज़िकल हार्ट होता है दैट्स कल्ब। और जो आपका चेस्ट है पूरे का पूरा रिब केज के साथ, जिसके अंदर आप अपने दिल को देखती हैं, इट्स सदर। शैतान जो है वो इस सदर के अंदर फूंके मारता है। सदर को अरबी ज़ुबान में गार भी कहते हैं। गार में जब कोई ज़ोर से बोलता है तो इको होती है ना। अब जब इको होती है तो इको में पता नहीं चलता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, डायरेक्शन नहीं पता चलती। आप कहती हैं मुझे लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होता किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। ये शैतान होता है जो आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ असल में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वसवसा वो चीज़ जो पीछे से आपके कान में डाला जाता है, सामने आके नहीं आपको वसवसा देता, पीछे से वसवसा देता है। तो अल्लाह ने तो कहा है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, तंगी नहीं चाहता। और हम चाह समझते हैं कि शरीयत आएगी तो ज़िंदगी तंग हो जाएगी, दीन के मुताबिक कारोबार और नौकरियाँ और पढ़ाइयाँ करेंगे तो फिर दुनिया तो मिलेगी ही नहीं, यही समझते हैं ना हम। क्यों नहीं पाकिस्तान में अपने बच्चों को पढ़ा पाते? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ मालूम यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बड़ा ख़राब है, मगर मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछ रही हूँ, अपने बच्चों को पाकिस्तान के सिस्टम में हम क्यों नहीं पढ़ा पाते? हम कहते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो क्या अच्छा मुसलमान नहीं बनेंगे? इसलिए आस्क योरसेल्फ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्तफ्ति कल्बिक, अपने दिल से पूछिए, अल्लाह आपके दिल में खुद इल्हाम डाल देगा कि किस वजह से हम करते हैं। अल्लाह से हिदायत मांगिए, अल्लाह मुझे सही फ़ैसले करने वाला बना दे, अल्लाह मुझे अपनी औलाद को सही डायरेक्शन पर डालने वाला बना दे, अल्लाह ये मेरे लिए अदाबे जारिया नहीं सदका जारिया मेरे पीछे बन जाएं। अल्लाह ने शरीयत को मुश्किल नहीं बनाया, अल्लाह ने दीन में डिसकम्फर्ट नहीं रखी। वमा जाला फिद दीन मिन हरज, अल्लाह ने इसमें कोई तंगी कोई डिसकम्फर्ट नहीं रखी। और हम कहते हैं दीन की बात मानूंगी तो बड़ी सख्ती आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, सब नाराज़ हो जाएंगे, ख़ानदान वालों को मनाऊंगी कैसे? ये सिर्फ हमारी सोच की कमी है, अक़ल की कमी है। दीन हमारे लिए बर्डन नहीं है, दीन हमें अनकंफर्टेबल करने नहीं आता। याद रखें वो तमाम मुसलमान जिनको दीन अनकंफर्टेबल लगता है वो पार्शियली दीन पर अमल कर रहे होते हैं। आप ख़ुद अपने अपने अंदर झांक कर देख लें, जब आप दीन के किसी हुक्म को कम्प्लीटली पकड़ लेती हैं आप हारमनी में आ जाते हैं, आप एक तरफ आ जाती हैं, आपको एक इंटरनल सुकून होता है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मोमिनीन की ज़िंदगी में कभी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आएगी। ये डिस्कम्फर्ट फिज़िकल नहीं है, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट आ सकती है आपके और मेरे लिए, बट स्पिरिचुअल कम्फर्ट, स्पिरिचुअल जिसको आप कहती हैं हारमनी, स्पिरिचुअल ट्रैंक्वैलिटी आपका साथ देगी। आपका ऐसा स्ट्रेस लेवल नहीं होगा कि जिसमें आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ें। दिस इज़ अ फैक्ट। जब इंसान अंदर से पुरसकून होता है तो उसकी सोच सलामत रहती है, जब उसकी सोच सलामत रहती है तो उसके हार्मोनल डिसबैलेंस भी नहीं हो पाता है, और जब हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेने पड़ते। जी सायरा, आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही आप मत भेजें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द दीन मत भेजें, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ। भेजा है आपने, आप भेजना चाहते हैं भेजिए, लेकिन मैं अपनी औलाद को दीन के कॉस्ट पर बाहर ना भेज दूँ। इसलिए कि माँ अपने सब चार बच्चे हैं आपके, आप चारों बच्चों को अच्छी तरह जानती हैं। अगर दो इंक्लाइंड होंगे दो इंक्लाइंड नहीं होंगे, देन आस्क अल्लाह फॉर द राइट एंड स्मार्ट डिसीजन। जो इंक्लाइंड है दीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप भेजती हैं, वो अपने दीन पर एज इट इज़ कायम रहेगा बल्कि और बढ़कर आएगा। ऐसे भी बहुत सी औलादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से नॉर्मल पाकिस्तानी ख़ानदानों से उठ कर गईं और वहाँ से पलटी हैं तो अपने पूरे दीन के साथ पलटी हैं। ये अल्लाह से आपको ख़ुद मांगनी पड़ेगी हिकमत। इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ कोई सेट रूल नहीं दे रही आपको। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए, आप अपने बच्चे को जानती हैं, अपने हालात को देखिए और अपने आसपास देखिए कि आपका बच्चा 2 साल 4 साल में एक मॉन्स्टर बन के वापस आएगा या एक अच्छा इंसान बन के वापस आएगा। मेजॉरिटी बच्चे तो वापस भी नहीं आना चाहते, इसलिए कि उनकी कश्ती वाला याद है ना, कश्ती में सवार किया और उसके बाद औलाद को सवार नहीं किया, दुर्रियत को सवार कर दिया, वो ऑटोमेटिक फिर वहीं जाके सेटल हो जाते हैं। हर तीसरे चौथे घर की कहानी है यहाँ पे, हर दूसरे चौथे घर में या तो तीसरा चौथा घर खाली है या एक अकेली अम्मा या दो अम्मा अब्बा रहते हैं। औलादें कहाँ हैं? बाहर हैं सारी की सारी। इतना भी नहीं हमारे अंदर दुनिया परस्ती होनी चाहिए। माँ बाप जिंदा हों और बूढ़े हों और हम कहें कि नहीं हम खुश हैं, हमने अपनी औलादों को बाहर भेज दिया, आपने उनको महरूम कर दिया जो जन्नत का दरवाज़ा उनकी ज़िंदगी में खुला हुआ था कि वो माँ बाप के साथ रहते, उनकी खिदमत करते, उनके नाज और नखरे उठाते। अभी आगे आयत आ जाएगी इंशाल्लाह। वो वक्त तो वो होता है कि जिसमें माँ बाप को औलाद की ज़रूरत होती है, हमने उनको घरों में छोड़ दिया 10 नौकरों के साथ, हम कहते हैं उनको ज़रूरत नहीं है हमारी, उनके पास हमारे पास बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। इट्स ओके, इट्स जस्ट द प्रेजेंस जो आपको और उनको महसूस होगी एक दूसरे के साथ। अल्लाह से मदद मांगें, अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं तो अल्लाह से मदद मांगें कि अल्लाह उनको दीन पर इस्तेकामत अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और अपने आप से ज़रूर पूछें किस नीयत से मैं बाहर अपने बच्चे को भेज रही हूँ। अगर आपकी नीयत यह है कि आपका एक अच्छा नेक बच्चा है और आप चाह रही हैं कि उसकी बेहतरीन एजुकेशन बैकग्राउंड बन जाए ताकि वो और आकर दीन को सर्व करे, वो और आकर अपने जैसे मुसलमान बच्चों को और इस्लाम से जोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट यह है कि मैं चाहती हूँ कि उसका करियर बहुत अच्छा हो ताकि वो अच्छा स्टेबल रहे ज़िंदगी में और बाप से भी आगे निकले, तो फिर इसमें आपको 10 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अंबिया का रास्ता सख्त था, अल्लाह ने तुम पर इतनी सख्ती नहीं डाली, हाँ तुमको ये सख्त लगती है शरीयत जब तुम शरीयत में पार्शियली आते हो, पार्शियली बाहर रहते हो। इट्स अ कम्प्लीट पैकेज, पिक एंड चूज़ नहीं करो इसके अंदर। अंबिया का रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, आजमाइशों का रास्ता है, बंदगी का रास्ता है, आबिद से अब्द बनने का रास्ता है। और जो आ जाए उसको अल्लाह ताला ने कई मरतबा एम्फसिस किया है कि वो एग्ज़िट ना ले, यू टर्न्स ना ले। सिरात मुस्तकीम कहाँ जाता है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? इट्स वर्टिकल। अगर आपने यू टर्न लिया तो आप कहाँ आएंगी, ज़मीन पर आएंगी। और फिर इंसान को अल्लाह ऐसा पटकता है कि इंसान के अंदर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं आती। कितने लोगों को हम जानते हैं जिनका दिल अल्लाह ने खोला, वो दीन पर चलना शुरू हुए, औरत होने के हिसाब से उन्होंने हिजाब भी कर लिया, फिर कोई उन्होंने एग्ज़िट लिया या कोई यू टर्न किया, और उसके बाद वो ऐसी पलटें कि अब अपनी ज़ुबान से कहती हैं कि अल्लाह माफ़ करे मुझे तो कोई दीन का हैज़ा हो गया था। अगर ये जुमले आपको किसी ऐसी औरत के मुँह से सुनने को मिलें तो आप सिर्फ हमदर्दी में उनके लिए बहुत सी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनका दोबारा दिल खोल दे। अल्लाह ना करे कि हिदायत मिलने के बाद हम हिदायत से महरूम हो जाएं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। कॉन्स्टेंट अल्लाह से दुआ किया करें। आयत नंबर 62 में आगे फरमाया, वलक़द अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु तअक़िलून। शैतान ने बहुत कामयाबी से तुम में से बड़ी बड़ी कौमों को, जिबिल्लन कसीरन, और नस्लों को गुमराह कर दिया। दोनों तरह से अल्फाज ये इस्तेमाल होते हैं, कौमों के लिए भी आता है जिबिल्लन और नस्लों के लिए भी आता है। अफलम तकूनु तअक़िलून, आखिर तुमने अक़ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अभी आपको बताया था शैतान की बंदगी से वही बचेगा जो राइट पैटर्न थिंकिंग पर आ जाएगा, जिसकी अक्ल को डायरेक्शन मिल जाएगी, वो अपने आसपास के बुतों को तलाश कर लेगा। कब मेरी औलाद मेरा बुत बन जाती है, कब मेरा शौहर मेरा बुत बन जाता है, कब मेरा ख़ानदान और मेरा स्टेटस और मेरा घर मेरे लिए बुत बन जाता है। अक्ल की डायरेक्शन इंसान को सिखा देती है। ये अक्ल अल्लाह ने ऐसा एलिमेंट रखा है कि ये जैसी तेज़ी से इंसान को भटका सकती है उतनी ही तेज़ी से इंसान को राह हिदायत पर भी ला सकती है। नेमत है अल्लाह की, और अल्लाह ने इसी नेमत को यहाँ पर मेंशन किया है, अफा लम तकूनु तअक़िलून, तो तुमने तक अक्ल से काम क्यों नहीं लिया। आप देखें ये बात कब कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम में से बहुत सी नस्लों को और कौमों को शैतान ने बहका दिया और तुमने अक्ल से काम नहीं लिया, ये बात कब कही जा रही है, दुनिया में या ये रोज़े महशर में हो रही है बात? अय्युहल मुजरिमून से बात हो रही है, ये आखरत का मंजर है और आखरत में कहा जा रहा है। आप देखें अगर आखरत होती तो स्कॉलर्स ने इसको मेंशन किया कि माजी में बात आनी चाहिए थी। यहाँ पर आता अफलम तअक़िलू, क्या तुमने अक्ल से काम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आया, यहाँ पर आया अफलम तकूनु तअक़िलून। इसके अंदर इस्तिमरार है, कंटिन्यूटी है। जब ये आता है, आपको कल भी बताया था, काना या काना की फैमिली में से कोई भी फेल अपने बाद किसी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के साथ अरबी ज़ुबान में आ जाए तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पास्ट कंटिन्यूटी का, जिसको आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, अरबी में कहते हैं इस्तिमरार। किसी काम का माजी में कॉन्स्टेंट होते रहना होते रहना होते रहना, इतना होना कि अगर उस काम का दोबारा मुस्तकबिल में मौका मिले तो दोबारा वही काम करें। यह है कॉन्सेप्ट माजी इस्तिमरार का। استمرار کے اندر. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو اتنی اللہ کی نافرمانی کی عادت اور شیطان کی بندگی کی عادت ہے, اب تو تم دنیا پیچھے چھوڑ آئے, لیکن تمہاری عادت اتنی پکی ہے کہ اگر تمہیں پھر دنیا میں بھیجا جائے تو تم پھر یہی کام کرو گے. تو اللہ نے ان کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ جنہوں نے اپنی عقلوں کو صحیح استعمال نہیں کیا. آیت نمبر 46 میں اسی سے ملتا جلتا ایک مفہوم آیا تھا, اور وہاں پر جو آیت 46 تھی اس پوری آیت 46 کا ریفلیکشن آپ کو افلم تکونو تعقلون کے اندر ملتا ہے. آیت 46 میں آیا تھا ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, ان کے سامنے کوئی آیت اللہ کی آیات میں سے نہیں آتی مگر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں, وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کان پہ آواز پڑتی ہے, اس لیے آیا ہے ما تأتیہم من آیت, کوئی آیت نہیں آتی. اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے, تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ جن کے کان پہ قرآن کی آواز پڑتی تھی لیکن وہ سننے کے بعد ٹرن کر جاتے تھے, اعراض کر جاتے تھے, رخ موڑ لیتے تھے, منہ موڑ لیتے تھے. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ کیوں منہ موڑتے تھے, اس کا جواب آیت 62 میں ہے, افلم تکونوا تعقلون, کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ جب اللہ کا کلام کان پہ پڑے اور انسان اس کو اپنی عقل کے ساتھ اٹیچ نہ کرے, پوچھے نہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے, کیا حکمت ہوگی اس کے اندر, اگر وہ نہ پوچھے اس کا مطلب ہے وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا. تو اللہ نے کانسٹنٹ یہ فیز آپ کو قرآن میں بتایا ہے, جیسے یہاں بتایا ہے, انسان کا ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے ایک سٹیپ ہے یہ عقل کا استعمال, جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ اسلام پر آنے کے لیے انسان عقل کو استعمال کرتا ہے. انسان عاقل مخلوق ہے, بتایا نا آپ کو, انسان عاقل مخلوق ہے. اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو آنکھیں بند کر کے دین پر چلنے کی بات نہیں کرتا. ہاں جہاں تک عالم الغیب کا معاملہ ہوگا, متشابہات کا معاملہ ہوگا, وہاں آپ کو اور مجھے آنکھیں بند کر کے بات ماننی ہوگی, سمعنا و اطعنا. لیکن جب دنیا کا معاملہ ہے جہاں شریعت ہے, قرآن تو کانسٹنٹلی کہتا ہے افلا تتفکرون, افلا تعقلون, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اللہ کانسٹنٹ دعوت دیتا ہے. سوچو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا کہا ہے, سوچو کیوں ایک وقت میں نے کہہ دیا کہ یہ رکعت دن کے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھ لینا, سوچو تمہیں جواب آئے گا عقل کی طرف سے, اگر آپ نے اپنی عقل کو اللہ کی دی ہوئی فطرت سے جوڑا ہوگا. آپ اور میں زندگی میں اتنی چوائسیز کر رہے ہوتے ہیں سارا دن میں, آپ کی اور میرے دن بھر میں اتنی چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کانسٹنٹ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز انٹرولس پر دی گئی ہے تاکہ ہم کانسٹنٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہدایت مانگیں. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ جب ہم قیام میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا, یا ہم روبوٹک ہو کے نماز پڑھتے ہیں, یا ہم غافل ہو کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں رب نماز میں سب یاد آتا ہے, رب یاد نہیں آتا. یہ ہماری غلطی ہے. نماز تو مقصد کے ساتھ دی گئی تھی, عبادات مقصد کے ساتھ دی گئی تھیں, رمضان کے روزے بھوکا رکھنے کے لیے نہیں دیے گئے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے اپنے انسانوں کو بھوکا رکھ کے, نہیں, انسانوں کے فائدے کے لیے, ان کے جسمانی اور ان کے روحانی فائدے کے لیے. ٹاپ مقصد روحانی فائدہ, اور اس کے ساتھ سیکنڈری مقاصد جسمانی فائدے بھی انسانوں کو مل جاتے ہیں. تقویٰ ملے انسان کو, اپنے آپ کو حلال سے روکو ان چند دنوں کے اندر تاکہ باقی 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے روک سکو. ہر عبادت کے پیچھے مقصد ہے. اپنے نفس کو مارو اور اس کے بعد اپنے نفس کو مارنے کے بعد زکوٰۃ دو, نکالو اپنے ہاتھ سے پیسہ. جب تم فرض صدقہ ادا کرو گے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو مار کے, تو باقی 11 مہینے تم نفلی صدقہ دے سکو گے. جاؤ اللہ کے راستے میں حج کرنے زندگی میں ایک دفعہ تاکہ تم کو جہاد فی سبیل اللہ کا ایسنس سمجھ آئے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو جو کہ فرض ہے, اس کے بعد دل چاہتا ہے وہ نوافل کی کیٹیگری میں آئے گا. ایک حج فرض کیا گیا ہے جسٹ ٹو شو دا ریفلیکشن کہ آپ کی اور میری زندگی میں کسی نہ کسی فارمیٹ کا جہاد فی سبیل اللہ شامل رہنا چاہیے. قتال فی سبیل اللہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اب اگین میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو جہاد کی سٹیجز بتاؤں اور پھر بتاؤں کہ قتال تک معاملہ کب تک پہنچتا ہے. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سوچنے کی طرف مسلمانوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کانسٹنٹلی قرآن میں, और यहाँ पर भी इस अशरफुल मखलूकात को, जिनको मुजरिम का टाइटल दिया गया है, जिनको अकल दी गई थी, जब इस वक्त इनको एहसास दिलाया जाएगा अकल नहीं थी तुम्हारे पास, सोचा नहीं था, अब सोचेंगे तो और हसरत में इजाफा हो जाएगा, और या वई लना के अंदर इजाफा हो जाएगा, और मेंटल टॉर्चर में इजाफा हो जाएगा। आप देखें, लोग जब जहन्नुम में डाले जाएंगे, सूरत मुल्क हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को में से अक्सर को याद होगी, जब लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे तो जन्नत का जो दरोगा फरिश्ता होगा वो क्या पूछेगा जहन्नमियों से, अलम यातिकुम मिन नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वालों में से नहीं आया था? तो वो क्या कहेंगे, आया था, बला कद जा अना नज़ीर फकज़्ज़बना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, आया था, आया था यानी हमने उसकी बात सुनी थी, जभी तो कज़्ज़बना किया था, बात सुनेंगे नहीं तो फिर कज़्ज़बना कैसे होगा, झुटलाएंगे कैसे, जिसने सुना उसने झुटलाया और फिर ये समझा कि नहीं नहीं कोई ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ऐसे अपनी तरफ से मौलवियों ने सख्त कर लिया, ये माइंडसेट, दें गारंटी, किसने आपसे कहा है कि ये वर्ड ऑफ अल्लाह है, इस तरह की भी तो बातें होती हैं ना, कहाँ से ऐसी बातें आती हैं, कौन सिखाता है, अकल जो कि बेराह रवि के ऊपर चल रही है, अगर आप उसको वही के ताबे ले आएंगे उस अकल को जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हमारी नेशन यूँ समझ लें, हम लोग जो हैं वो हम दो एक्सट्रीम्स पर चल रहे हैं, दो एक्सट्रीम पर इस तरह से मैं कह रही हूँ कि देखें इस वक्त ख़ासतौर पे अगर आप अपने पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन, हालांकि हमारे तो वो सही तरह से जो हैं वो सेंसस भी नहीं होते हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त जो भी डेमोग्राफिक फिगर्स रफली आते हैं 60% यूथ है, 60% यूथ, अगर आप इस 60% यूथ को सही डायरेक्शन दे दें सोचने समझने की और दीन के साथ जुड़ने की, वो कितना पोटेंशियल है, और पाकिस्तान के यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, बाकी दुनिया में भी होगा, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी होगा, बट इट्स अ फैक्ट पाकिस्तान के बच्चों में, पाकिस्तान के इंसानों में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल रखा है, जहाँ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल रखा है वहीं अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को बहुत हार्ड वर्किंग भी बनाया है, आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अगर आप और मैं और हमारे बच्चे नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग नहीं है, पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो टफ़ लाइफ्स गुजारते हैं, अगर इन बच्चों को उस पॉपुलर कल्चर में से थोड़ा सा हटाया जाए जिससे ये आजकल इम्प्रेस हैं, अगर उस पॉपुलर कल्चर में से हटा के इनको वही का एक ग्लिम्प्स दिया जाए तो इनको अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए इस वक्त होता क्या है, जो मैं कह रही हूँ ना कि दो तरह से उम्मत या पाकिस्तान के लोगों को डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली, मैं अक्रॉस द सोसाइटी सबकी क्रॉस सेक्शन की बात नहीं कर रही, पढ़े लिखे तबके में एक तरफ है माँ बाप जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अपनी मिसाल हम देख रहे हैं ना, हम जैसे माँ बाप जिनको अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत कुरान की अहमियत का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, एक है हमारे जैसे माँ बाप और दूसरी तरफ है हमारी औलादें, हमारी औलादें सवाल करती हैं कि क्यों इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, हमारी औलाद सवाल करती है कि किसी नॉन मुस्लिम को जहन्नुम की आग में क्यों जलाया जाएगा, हमारी औलादें सवाल करती हैं कि क्या हुआ अगर मैंने जो है वो नमाज नहीं पढ़ी, मैं लोगों के काम भी तो इतना ज़्यादा आता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या हो गया अगर मैं पर्दा नहीं करती, क्या हो गया अगर मेरी दाढ़ी नहीं है सुन्नत के मुताबिक, मैं किसी का दिल भी तो नहीं दुखाता या दुखाती, क्या आपके पास क्या गारंटी है कि कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, क्या गारंटी, ये सारे सवाल एक तरफ यूथ के हैं, एक तरफ आपकी और मेरे जैसी माएँ हैं जो दीन पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से मेजॉरिटी हम लोग, आई एम 100% श्योर, मैंने कोई लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं सुना था दीन का जिसके बाद मेरा दिल खुला हो, कुछ भी नहीं था कि एक हुमा नजमुल हसन की पहली क्लास में मैं गई थी और अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे, जेब यहाँ आती हैं वो मुझे लेके गई थी, उनके साथ मैं एक क्लास में गई थी एंड शी वॉज जस्ट टेलिंग द हिस्ट्री, सूरत अहज़ाब शुरू कर रही थी उनके क्लास में, सूरत अहज़ाब का पहला दिन था एंड शी वॉज जस्ट टेलिंग द हिस्ट्री ऑफ कुरैश एंड मुस्लिम्स, बस दैट वॉज द ओपनिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट, कि जिससे मुझे लगा कि इस किताब में इतना कुछ है, मैंने कभी इसको इस तरह से इस नीयत से खोल कर ही नहीं देखा, लेकिन अब आपका बच्चा और हम, मैं जितनी खवातीन बैठी हम इस बात को मानते हैं, हम कोई क्रिटिकल जवाब मिलने की वजह से, कोई रैशनल जवाब मिलने की वजह से दीन में नहीं आए होंगे, बस कोई बात क्लिक कर गई, जैसे एक आयत कुरान की वमा कदरुल्लाह हक का कदरी ही, इट कैन क्लिक यू डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट, अगर आपको वाकई समझ आ जाए और आप एक तरफ अपनी नेमतें देखें, एक तरफ आप अल्लाह की इनायतें देखें, अपनी लग्जोरियस लाइफस्टाइल को देखें और दूसरी तरफ आप इस आयत को देखें, वमा कदरुल्लाह हक कदरिही, आपको वाकई शर्म आती है कि अल्लाह ताला ने मुझे वाकई मेरे गुनाहों के ऊपर कितनी ढील दी हुई है, मेरी नेमतों के साथ मुझे कितनी ढील दी हुई है। लेकिन आज का बच्चा वो इन चीज़ों से अपील नहीं करता, इसलिए कि उसके आसपास का माहौल बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसको रैशनल जवाब चाहिए। तो अब माँ के पास रैशनल जवाब नहीं है, माँ कहती है नहीं बस मानो, मैंने कहा है तो मानो, मैंने आपको पहले कह दिया, अब आपका बच्चा उस फॉर्मेट पे नहीं है कि आपके कहने से मान जाए, आपको उससे बैठ के डिस्कशन करनी होगी, आपको उसको समझाना होगा, एंड इफ़ यू आर नॉट केपेबल टू आंसर हिम और आंसर हर, काइंडली उसको किसी क्लास में भेजिए। एक तरफ आप हैं कि आप बस आंखें बंद करके मान रही हैं, मैं आपको भी कहूँगी दीन बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है, दीन में बहुत सी हिकमतें हैं और अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह बताने वालों की कमी नहीं है। आप जब दीन के किसी हुक्म पर अमल करें, आपके पास ये स्टेमिना, ये ताकत, ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उसके लिए कन्विंसिंग दलाइल दे सकें। और ये स्टेज आपकी आएगी जब आप इल्म हासिल करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, एंड इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस।